नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं भागवत पुराण की कथा परीक्षित की मृत्यु। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या अर्थ होता है इसका? यानी कि जब बुरा समय आता है तो बुद्धि आपसे विपरीत यानी कि अनुचित काम करवा ही देती है। और ये तो सृष्टि का नियम है कि यदि किसी ने अनुचित किया है तो उसका बुरा फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मराज क्यों ना हो, अच्छा इंसान क्यों ना हो। पर भूले से भी जब कुछ अनुचित हो जाता है तो अपने किए को झेलना ही पड़ता है। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है, वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसका बुरा समय उसे ऐसा करने पर विवश कर देता है। वो बुरा समय जो उसके ही किसी पिछले कर्म का परिणाम है। जी हां, आइए इस बात को जरा और ठीक से समझते हैं। राजा परीक्षित पांडवों के वंशधर थे, अभिमन्यु के पुत्र। परीक्षित इतने महान थे कि जब वो अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने उन्हें गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब श्री कृष्ण ने स्वयं परीक्षित को बचाया था, क्योंकि गर्भ में इतनी कठिन परीक्षा हो गई थी, इसी कारण इस बालक को परीक्षित के नाम से जाना गया। राजा परीक्षित धर्म का पालन करने वाले राजा थे। हमेशा अपनी प्रजा की सोचते, कुछ भी ऐसा नहीं करते कि जिससे उनकी प्रजा को कोई दुख झेलना पड़े। परंतु कई बार समय के आगे बड़े से बड़े बलवान की हार हो जाती है। यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण धरती छोड़कर के जा चुके थे। कहते हैं कि उसी समय कलयुग ने धरती में प्रवेश किया था। जब उसके पास रहने के लिए स्थान नहीं था, तब परीक्षित ने कलयुग से कहा था कि वो केवल उसी जगह पर रहे जहां पर जुआ, काम वासना, झूठ और मक्कारी होती है। और क्योंकि ये सब बातें एक साथ वहां होती है जहां सोना यानी कि गोल्ड होता है, तो कलयुग स्वर्ण में रहने लगा। राजा परीक्षित का अपना मुकुट भी सोने का ही था। कलयुग ने अपना वास राजा परीक्षित के मुकुट में बसा लिया। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन से धर्म पर चलने वाले राजा परीक्षित का अंत निश्चित हो गया। राजा परीक्षित ने अपने बुरे समय को न्योता दे दिया था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में निकले। जंगल में भटकते हुए वे ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि लोग जब जंगल में अपनी कुटिया बना के रहते थे तो उनका ध्येय ये होता था कि वो ध्यान कर सकें। तो ऋषि शमीक भी ध्यान में लीन थे और उन्हें राजा परीक्षित के आने का पता ही नहीं चला। राजा परीक्षित ने ऋषि को पुकारा। पुकारने पर भी ऋषि का कोई उत्तर नहीं आया। राजा परीक्षित क्रोध में आ गए। उन्हें लगा कि ऋषि शमीक ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। बस यही वो क्षण था जहां पर राजा परीक्षित का बुरा समय या कलयुग उन्हें भड़का रहा था। परीक्षित को संभल जाना चाहिए था। कुटिया में रह रहे एक साधु से भला एक राजा क्यों नाराज होगा? पर विनाशकाल शायद इसी को कहते हैं दोस्तों। अपने अहंकार में राजा परीक्षित को लगा कि उनका अपमान हुआ है। ऋषि शमीक को सबक सिखाने के लिए परीक्षित ने उनके गले में एक मरे हुए सांप को डाल दिया। ऐसा करने पर भी ऋषि शमीक को पता ही नहीं चला। सोचिए कितने गहन ध्यान डीप मेडिटेशन में लीन होंगे वो। परीक्षित को तब भी ये बात नहीं समझ आई और वो वहां से चले गए। कुछ समय के बाद ऋषि शमीक के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। उन्होंने पिता के गले में मरे हुए सांप को देखा। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर एक तक्षक नाग के काटे जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। समाचार राजा परीक्षित तक पहुंच चुका था। वो जानते थे कि उनसे भूल हो गई है। उनके राज्य में उन दिनों सुखदेव मुनि आए हुए थे। परीक्षित ने उनसे उपाय पूछा तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनने के लिए कहा। राजा परीक्षित भगवान की भक्ति में लीन हो गए। 7वें दिन जब तक्षक नाग ने आकर राजा परीक्षित को काटा तो उन्हें पता भी नहीं चला और उनकी मुक्ति हो गई। शायद राजा परीक्षित जान गए थे कि उनका अंत समय निकट है और इसलिए वो अधिक विचलित नहीं हुए और भगवान की कथा सुनते हुए ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जरा सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति में इतनी समझ थी कि वो कलयुग को अपने राज्य से बाहर देखना चाहता था, परंतु हार कर उसके आदेश पर कलयुग उन्हीं के पास रहने लगा, जहां पर सारी बुराइयां एक साथ होती थीं, यानी के स्वर्ण में। बस यही एक भूल अंत में परीक्षित के अंत का कारण बनी। तो मित्रों, जब बुराई हमारे में घर कर जाती है ना, तो वो हमसे ऐसे ऐसे काम करवाती है कि जिससे केवल नाश या विनाश ही हो सकता है। नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट। आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या सोचते हुए आपने ये बुरा कदम उठा लिया, पर सोच नहीं रहे थे इसीलिए बुरा कदम उठाया गया, और आपको सोचने से रोका उस बुराई ने जिसे आपने अपने अंदर जगह बनाने दी। यही वो क्षण, वो मोमेंट होता है जिसमें आप अपने विनाश काल को इनवाइट कर चुके होते हैं और आपकी बुद्धि विपरीत चलने लगती है और उसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। राजा परीक्षित के मरने के बाद उनके बेटे जन्मेजय को जब पता चला कि एक नाग के कारण उनके पिता का अंत हुआ, तो उन्होंने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ आरंभ कर दिया। अनगिनत नाग उसमें मारे गए थे। ये इसलिए हुआ कि अपने अहंकार में राजा परीक्षित ने एक ऋषि के ऊपर एक मरा हुआ नाग डाल दिया। और देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी बुराई के आसपास आप हों और उससे आपको कोई इमीडिएट बेनिफिट दिख रहा हो, तो यह भी सोच लिया कीजिए कि उसके परिणाम कितनी दूर तक जाएंगे। आशा करता हूं कि इस कहानी से आप अपने जीवन को निखार पाएंगे, संवार पाएंगे और एक अच्छी राह को पा पाएंगे। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।